अफवाह उड़ी कि सरकार छिपे तौर पर धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दे रही है, ईसाई बनाने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। इस अफवाह से सिपाही और भड़क उठे। सरकार और ईसाई मशीनरियों के आपसी रिश्तों ने अफवाह को और बल दे दिया। कुछ छावनियों में मिशनरियों को ईसाई धर्म प्रचार की पूरी छूट थी। इसके अलावा आटे में हड्डी का चूरा मिलाने की खबर और नई इनफील्ड राइफल के प्रयोग ने सरकार के प्रति और संदेह पैदा कर दिया। नई राइफल में प्रयोग होने वाली कारतूसों को राइफल में भरने से पहले दांत से खींचकर खोलना पड़ता था। इसमें जो ग्रीस लगी होती थी वह गाय और सुअर की चर्बी से बनती थी। सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को इससे ठेस पहुंची। उन्हें लगा कि उनका धर्म खतरे में है, लेकिन उनके क्षोभ का कारण केवल आहत धार्मिक भावनाएं ही नहीं थी, वे खराब सेवा शर्तों के कारण भी क्षुब्ध थे। वेतन बहुत कम था और जिंदगी नरकीय। पैदल सेना के सिपाही को 7 रुपये मिलते थे और घुड़सवार सेना के सिपाही को 27 रुपये, लेकिन इसी में से उसे अपनी वर्दी, भोजन इत्यादि पर खर्च भी करना पड़ता था। समूचे खर्चे के बाद बमुश्किल 1 या 2 रुपये बचते थे। इसके अलावा उन्हें हमेशा यह महसूस होता था कि वह समान वेतन भोगी अपने अंग्रेज साथी का सहायक बनकर रह गया है। हर कदम पर उसे लगता कि गोरे काले का भेद किया जा रहा है। पदोन्नति और अधिकार दोनों मामलों में उसके साथ भेदभाव बरता जाता था। T.R. Holmes ने लिखा है कि सिपाही जानता था कि वह चाहे जितनी कर्तव्य निष्ठा दिखाए, चाहे जितना बहादुर सैनिक बन जाए, उसे अंग्रेज सैनिक के बराबर वेतन कभी नहीं मिलेगा। 30 वर्ष की कर्तव्यनिष्ठ सेवा भी उसे अंग्रेज अफसर का मातहत होने से बचा नहीं सकेगी। वास्तव में ये सिपाही सैनिक वर्दी में किसान थे, जो अब तक गांव की मिट्टी से जुड़े थे। एक सैनिक अधिकारी ने डलहौजी को संभावित खतरे के बारे में चेतावनी दे दी थी। हमारी सेना देश के किसानों के बीच से बनी है, किसान के कुछ अधिकार हैं, यदि इन अधिकारों का हनन हुआ तो हम ज़्यादा दिनों तक सेना पर भरोसा नहीं कर सकेंगे। यदि आप भारतीय जनता की संस्थाओं पर कुठारघात करेंगे तो सेना भारतीय जनता की हमदर्द हो जाएगी, क्योंकि वह इसी के बीच से बनी है। किसी भी व्यक्ति के अधिकारों के हनन का मतलब है किसी न किसी सैनिक के अधिकारों का हनन, क्योंकि हर सैनिक किसी न किसी का या तो बाप है, या बेटा है, या भाई, या दूर का रिश्तेदार। वास्तव में उस समय अवध में शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा हो जिसका कोई सदस्य सेना में न रहा हो। केवल अवध के ही 75,000 सैनिक सेना में थे। कोई भी घटना उन्हें तत्काल प्रभावित करती थी। नए भू राजस्व कानून ने सैनिकों को बहुत प्रभावित किया। इसके खिलाफ केवल सैनिकों की ओर से 15,000 अर्जियां दायर की गईं। दिल्ली के विद्रोहियों का घोषणा पत्र इस बात का सबूत था कि सिपाही अंग्रेजी शासन के दमन के प्रति सचेत हो गए थे। इस प्रकार सेना अपने आप में ही अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का पर्याय हो गई थी। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि सैनिक किसी न किसी तरह आम जनता से जुड़े थे। ग्रामीण जनता के बीच अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का प्राय हो गई थी। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि सैनिक किसी न किसी तरह आम जनता से जुड़े थे। ग्रामीण जनता के बीच अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो विद्रोही काम कर रहे थे, उन्होंने विद्रोही सिपाहियों का समर्थन किया, विशेषकर उत्तर पश्चिम प्रांतों और अवध में। बंगाल आर्मी में ज़्यादातर सैनिक इन्हीं क्षेत्रों से भर्ती किए जाते थे। केवल मुजफ्फरनगर और सहारनपुर को छोड़कर बाकी सारे स्थानों पर सिपाहियों के विद्रोह के साथ साथ नागरिकों का भी विद्रोह शुरू हो गया।